वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तत्तिसम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तत्तिसम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तद्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तद्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तद्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम् प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् महे त्वच्छ्रवसाः तस्य मरुत्वान्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तद्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम् मरुत्वान्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तत्त्विषम् अयातयामोपवैरनन्तरम् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तत्त्विषम् ಅಯಾತಯಾಮೋಪವೈರನಂತರಂ ಸಹ್ಯ ರಾಜಂ ಜುಹವಾಮ ತೇಹಿತಂ. ಭಯಂ ಹಂ ಮರುತ್ವಂತಂ ರಾಜ ಇಂದ್ರ ಕೋ ಇಹ ಯಹ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಾ ನಾಶನಂ ನಾಶ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ವಯಾಮಹೆ ಬುಲಾ ಲೆಂಗೆ ತ್ವತ್ ಶ್ರವಸಾ ಆಪ್ಕೆ ಸುಜಸ್ ಸೆ ಹತತ್ಯುಷಂ ಪಹಲೆ ಸೆ ಅಪ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಸೆ ರಹಿತ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಅಯಾತಯಾಮ ಇಸ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಕಭಿ ಭಿ ನ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ಉಪಹವೈ ಆವಾಹನ ಮಂತ್ರೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಅನಂತರಂ ಶೀಘ್ರ ಹಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಬಲಪೂರ್ವಕ ರಾಜನ್ ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಜುಹ್ವಾಮ ಅಗ್ನಿಮೆ ಬಲಿ ಕರ್ ದೇಂಗೆ ತೇ ತುಮಾರೆ ಅಹಿತಂ ಶತ್ರು ಕೋ. ಅನುವಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರಾ. ಹೇ ರಾಜನ್ ಆಪ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಮೇ ವಿಘ್ನ ಡಾಲ್ನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರ ಕಾ ತೇಜ್ ವೈಸೆ ಹಿ ಘಟ್ ಚುಕಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಉಸ್ಕಾ ಆವಾಹನ ಕರೆಂಗೆ ವಹ ಅವಶ್ಯ ಆಯೇಗಾ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಮಂತ್ರ ಬಲ್ ಸೆ ಉಸೆ ಅಗ್ನಿ ಮೇ ಗಿರಾ ದೇಂಗೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಹ ಆಪ್ಕ ಶತ್ರು ಹೈ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಜ್ಞ ಮೇ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರೋ ಕೆ ಸಮುಚಿತ ಉಚ್ಚಾರಣ ಸೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಕಿಯೇ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಕಿಂತು ಕಲ್ಯುಗ ಮೇ ಏಕ್ ಭಿ ಸುಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಹೀ ಹೈ ಜೊ ಮಂತ್ರೋ ಕಾ ಸಹಿ ಸಹಿ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ ಸಕೆ. ಅತಃ ಐಸೆ ಮಹಾನ್ ಯಜ್ಞೋ ಕಾ ಆಯೋಜನ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಇಸ್ ಯುಗ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಜೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಬತಲಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ವಹ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಂದೋಲನ ಹೀ ಹೈ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಧಾಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯ ದೇವಂ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯ ಜನನಿಸ್ತಾರಿಣೆ. कथा चौथे स्कंध की है. इसमें भगवान के आवेशावतार पृथ्वी महाराज का चरित्र चल रहा है. पृथ्वी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए और 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिए. 100वां अश्वमेध यज्ञ भी अब चल रहा था, पूरा ही होने वाला था. तो उनके यज्ञ से इंद्र को बहुत भारी चिंता हुई। पहले ही चिंता थी, अब चिंता की अंतिम स्थिति आ गई और वे देखिए यज्ञ इनका पूरा न हो, क्योंकि पृथु महाराज के जो यज्ञ थे वह बहुत श्रेष्ठ कोटि के हो रहे थे। सौ यज्ञ जो करता है वह सत्क्रतु होता है और वही इंद्र बनता है। तो इंद्र ने पहले सौ अश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ के प्रभाव से वे इंद्र बने हुए हैं। पृथु महाराज के इस यज्ञ इन यज्ञों को देख करके कि अब तो ये सौ यज्ञ पूरा कर लेंगे, तो निश्चय हो सकता है कि हमारा पद ये छीन लेंगे, मैं इस पद पर नहीं रह जाऊंगा। यद्यपि कि इंद्र पद के लिए सौ अश्वमेध यज्ञ आवश्यक होता है, जो सौ अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपादन कर लेता है वही इंद्र पद पर बैठता है, लेकिन भागवत में कौन मन्वंतरों में इंद्र बनेंगे इनका लिस्ट पहले से ही प्रस्तुत कर दिया गया है। तो लगता है कि भगवान की व्यवस्था के द्वारा एक के बाद एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतरों में इंद्र की व्यवस्था होती रहती है। पहले से ही लिस्टेड है इनके बाद ये होंगे, इनके बाद ये होंगे, लेकिन फिर भी जो पद पर चल रहे हैं संभवतः उन्हें यह नहीं पता है कि लिस्ट के अनुसार ही होगा, हमारा पद नहीं जा सकता है। वो सोचते हैं कि इस समय यदि ये ऐसा कर देंगे हमसे हमारे यज्ञों से तो बहुत उत्तम यज्ञ हो रहा है, तो यही इंद्र बना दिए जाएंगे और उस पद के हमारा पद छीन जाएगा। इस भय से उस सत्कार्य में भी विघ्न डालते रहते हैं। जैसे इस समय कोई प्रधानमंत्री है, चुन लिया गया है, सिलेक्ट हो गया है, लेकिन उससे बहुत फाइन राजनीति करने वाले बहुत देश में बहुत बढ़िया कीर्ति स्थापित करने वाले यदि कोई हो जाए और पैसा योग्य निकल जाए तो उसी को लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसलिए उसको डर रहता है, हर राजनीतिज्ञों को डर रहता है कि कोई ऐसा राजनेता न निकले, सब दब करके रहे, मेरा ही वर्चस्व रहे। तो इस प्रकार से इंद्र भी अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। उनके मन में डर है कि पृथु महाराज के इतने यज्ञ तो इतने उत्तम हो रहे हैं, हो सकता है कि इसी बीच अवधि में ही हमको हटा करके सुयोग्य पात्र मिलने पर उन्हीं को इंद्रपद दिया जा सकता है, इसलिए बड़ा उन्हें इंद्र को घबराहट होती है। रामचरितमानस में एक कथा आई है कि देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे और एक पर्वत प्रांत मिला हिमालय में और उसको देख करके सुंदर सुरम्य पर्वत पर एकांत पर्वत और वन प्रांत को देख करके सहज विमल मन लागी समाधि, उनको सहज उनका नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उनका मन सहज निर्मल है और निर्मल मन है और भगवान में मन उनका लग गया और ऐसा मन लगा कि समाधि उनको लग गई। समाधि की स्थिति है कि देह शुद्धि भूल जाती है और केवल भगवत स्मृति या ध्येय की स्मृति रहती है। तो उनका भगवान में ही मन लग गया, समाधि लग गई और बहुत दिनों तक समाधि लगी रही, कठिन तपस्या हो गया। इंद्र को देख करके कि नारद जी इतनी बड़ी तपस्या क्यों करने लगे, हो न हो ये तपस्या कर रहे हैं तो मेरा इंद्र पद लेना चाहते हैं, इंद्र पद लेने की इनकी इच्छा है, इसीलिए अब तो मेरा। और नारद जी जब तपस्या करने लगे, इतना भारी तपस्या कर रहे हैं, तो मेरा तो इंद्र पद अब जाने वाला ही है, इसलिए इनके तपस्या को भंग करना चाहिए, इनकी तपस्या को नष्ट करना चाहिए। तो तपस्या का मतलब है स्वधर्म के पालन में, भगवान के ध्यान में, स्मरण में अंतर्मुख होकर के उनका ध्यान करके समाधि लगाए हुए हैं, तो इनको बहिर्मुख करना चाहिए तपस्या से। इसलिए अप्सराओं को और गंधर्वों को उनके तप को भंग करने के लिए भेज दिया, कामदेव को भेजा। समाधि के विपरीत बहिर्मुखता की सीमा है काम और इंद्रिय भोगों में लिप्त हो जाना। तपस्या भंग हो जाएगा तो स्वतः अपने पद पर हो हट, अपने पोजीशन से हट जाएगा और इंद्र मेरा पद नहीं ले सकते हैं। तो उस पर तुलसीदास जी कमेंट करते हैं कि इंद्र सोच रहे हैं, तो इनकी सोचान कैसा है कि जैसे कोई सूखी हड्डी कुत्ता चबा रहा हो, कुत्ता जब सूखा हड्डी चबाते हैं तो चबाते हैं, हड्डी में कोई रस नहीं होता है, वो सूखा हड्डी चबाते हैं तो उससे कुछ उनका भीतर का मसूड़ा उसूड़ा और मुख के अंदर कुछ छिल जाता है, क्योंकि हड्डी कठोर होता है तो उसके छिलने से उनके मुंह में भी कुछ खून उनका रस आता है और उससे हड्डी में ही उनको रस मिलने लगता है, लेकिन हड्डी में कोई रस नहीं है। तो लेकिन कुत्ता उसको बहुत आनंद से चूसता है सूखी हड्डी, तो वैसा कुत्ता कोई सूखा हड्डी चूस रहा हो और कहीं वो देख ले कि इधर से सिंह निकल रहा है, सिंह भी इधर ही आ रहा है, तो उसको यह भय हो जाए कि सिंह हो न हो हमारे सूखी हड्डी को हड़पने के फेरे में इधर आ रहा है, इसलिए अब यहाँ से घसक जाना चाहिए, अब हड्डी को लेकर के भाग जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए, इस ढंग की वो बात सोचे। उसी प्रकार से नारद जी ममपद चाहत देव ऋषि तिमिसुर पति ही नलाज, देव ऋषि नारद जी मेरा पद इंद्र पद चाहते हैं, और इस प्रकार से इंद्र सोच रहे हैं कि मेरा पद चाहते हैं, इसलिए अपना पद सुरक्षित कर लेना चाहिए इसको, और उनके तप उनका तप भंग कर देंगे हम तो हम अपना पद सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, जैसे सिंह सूखा हड्डी थोड़े खाता है, वो तो सिंह तो किसी जानवर का वध करता है और वध करने के बाद डायरेक्ट उसका खून चूसता है, गले से उसके फूंक फोड़ करके उसमें खून चूसता है और उसका मांस खाता है, ताजा ताजा मांस खाता है, वो हड्डी थोड़े खाता है, लेकिन जैसा जो होता है वैसा वो सोचता है। अब इंद्र तो सकाम हैं, इन्हें इंद्रियों के भोग चाहिए, इन्हें धन भोग और ऐश्वर्य चाहिए और इसी को महान मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो तो भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ट्यम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहय कांक्षी। हे सर्व सौभाग्य निधि, हम नाक पृष्ठ नहीं चाहते, ना स्वर्ग का पद, स्वर्ग का सिंहासन मालिकियत हम नहीं चाहते, ना नाक पृष्ठम न तो सार्वभौम हम। और सार्वभौम इस संसार में पूरी पृथ्वी का राजा होना ये भक्त लोग नहीं चाहते, न रसाधिपत्यम। और इस रसातल का जो वैभव है वह कभी कभी स्वर्ग से भी किसी मतलब में उत्तम है तो उसको भी नहीं चाहते हैं। न योग सिद्धि न अपुनर्भवम हुआ, योग सिद्धियों को हम नहीं चाहते हैं, न अपुनर्भव को, अपुनर्भव जो बार बार जो जन्म मरण होता है उससे, उसको भी हम नहीं चाहते, उससे मुक्ति जो होती है उसको भी मैं नहीं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ तो मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ, भगवान को चाहता हूँ। तो भगवान के भक्त लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब नहीं चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों में शिरोमणि हैं नारद जी, वे काहे को इंद्र का पद चाहते हैं, लेकिन इंद्र सोच रहा है कि हो न हो ये मेरा पद चाह रहे हैं, इसलिए वो अब उनके तपस्या में विघ्न करने के लिए, वो तपस्या में गया विघ्न करने का प्रयास भी करता है इंद्र, लेकिन नारद जी तो भगवान के भक्त थे, वो तनिक भी उन्हें उनकी तपस्या भंग नहीं, उन्हें क्रोध रोध नहीं आया और श्राप नहीं दिया, नहीं अप्सराओं के ही पर उनका मन लुब्ध हुआ। तो ये रामचरितमानस में कथा है। इंद्र को पृथु महाराज से बहुत भारी स्पर्धा है कि हो न हो ये मेरा पद अब इन्हीं को मिल जाएगा, ये यज्ञ कर रहे हैं तो इनको मिल जाएगा, इसलिए यज्ञ को विघ्न के लिए जो यज्ञ में अश्व होता है, घोड़ा होता है, उसको आकर के चुरा लेते हैं, धीरे से चुरा लेते हैं। तो यज्ञ में चुरा ले गए घोड़ा को, अत्रि जो उनके प्रधान ऋत्विज थे पृथु महाराज के, अत्रि ऋषि, तो जान गए। और जो पृथु महाराज के पुत्र थे विजिताश्व, तो उनको कहा कि देखो देखो इंद्र घोड़ा चुरा ले जा रहा है, उसको परास्त करके घोड़ा लाओ। तो वे गए घोड़ा को लाने के लिए शस्त्र उठा करके, तो वे धनुष बाण ताने हुए थे और जाकर देखा तो ये तो इंद्र नहीं है, ये तो महात्मा है, जटिलम भस्मनाच्छन्नम, ये महात्मा है, इनकी जटाएं हैं और विरक्त हैं, संसार से उपराम हैं, देह में राख भस्म लगाए हुए हैं और सन्यासी का भेष बनाए हुए हैं, ये तो मूर्तिमान धर्म ही हैं, ऐसा समझ करके उनका वध नहीं करना चाहा। लेकिन फिर बाद में वो छोड़ करके चले गए, अशोक घोड़े को लाया, फिर ला करके और सोने के जंजीर में अश्व को बांधा गया था बहुत बढ़िया से। तो इस समय घोर अंधकार उत्पन्न करके और फिर वही हरकत इंद्र ने किया, अंधकार करके और कपाली का भेष बना करके और घोड़े को चुरा लिए। तो ये जो अपना मतलब साधने के लिए जो भेष बना रहे थे अच्छे लोगों का, धर्मात्माओं का, उस भेष को देख करके जनता बहुत प्रभावित होती थी कि वो अपना मतलब साधने के लिए और दुनिया में ठगने के लिए बहुत उत्तम भेष है, बहुत कामयाब की चीज़ है। तो इंद्र जो जो भेष बना रहे थे उसको जनता अपना रही थी कि अपना ठगबाजी करने में बहुत काम आएगा। और यज्ञ अब पूरा होने को था, उसमें घोड़ा चुरा लेने से पृथु महाराज को बहुत क्रोध हुआ और उनके यज्ञ में बैठे हुए थे, किसी की हिंसा नहीं करने वाले थे, लेकिन उनके मन में क्रोध हो गया कि इतना हरकत कर रहा है इंद्र, इसको अब मार देना है, मन में गांठ बांध लिए कि इसको मार देना है, और धनुष उठा करके और तैयार हो गए। तो ऋत्विजों ने देखा कि अब तो ये यज्ञ भंग हो जाएगा, यज्ञ में किसी की हत्या नहीं की जाती है तो वध कर देंगे, तो यज्ञ भंग हो जाएगा, इनका पूरा यज्ञ नहीं हुआ। इसलिए कहा कि आप शांत रहिए, यज्ञ में किसी दूसरे की हत्या नहीं की जाती है, हिंसा नहीं की जाती है, आप शांत रहिए, हम लोग जो आप चाह रहे हैं उस काम को हम लोग ही कर देंगे। कि वयम मरुत्वंतम, हम मरुत्वान को, इंद्र वर्षा के देवता हैं, जहाँ इंद्र रहते हैं वहाँ पर 49 मरुत पवन देवता भी चलते हैं, जहाँ इंद्र चलेंगे तो वहाँ पवन भी चलेगा, जहाँ वर्षा होगी तो आंधी भी चलती है, तो इंद्र को मरुत्वान कहा जाता है। तो हम मरुत्वान को, इंद्र को, इहार्थ नाशनम, यहीं पर हम इंद्र को बुला करके और उसको मार देंगे। इंद्र तो बड़े उपयोगी देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, वर्षा करते हैं, सारा संसार उनके जिलाने से जी रहा है, तो ऐसे देवता को क्यों आप यहाँ मारने के लिए बुलाएंगे। तो इस प्रकार कहते हैं इहार्थ अर्थ नाशनम, पानी संसार में बरसा करके, जल दे करके सारे संसार को जिलाते हैं, लेकिन इंद्र अब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ को भंग करने के लिए, हमारे मतलब को, हमारे प्रयोजन को भंग करने के लिए इंद्र सारा कार्य कर रहा है, इसलिए हमारे उद्देश्य को फेल करने वाले इंद्र को हम यहीं पर होयामहे, हम यहीं पर बुलाएंगे, यहीं पर आवाहन करेंगे, आवाहन करने पर वो आ जाएगा। और सच कहिए तो त्वच श्रवसा हतत्विषम, इंद्र में कोई शक्ति नहीं है, उसका तेज समाप्त हत हो गया है। कैसे इंद्र का तेज कैसे हत हुआ है, तो त्वच श्रवसा, आपका जो इतना यज्ञ और अनेक अनेक सुजस है, उस सुकीर्ति से उसका, इंद्र का जस फीका हो गया है, उसकी जो तेजी है वो समाप्त हो गई है, तो उस इंद्र को हम यहीं बुला लेंगे। कैसे बुला लेंगे इंद्र को, तो अयात याम उपहवई, जो अगत वीर्य जिसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हो, फेल नहीं होने वाला है, वैसे उपहव से आवाहन मंत्रों के द्वारा यहाँ बुला लेंगे, और उसके बाद तत्काल प्रसहय जुहवाम, उसको अग्नि यज्ञाग्नि में उसको हम जुहवाम हवन कर देंगे, जला करके मार देंगे, क्योंकि ते हितम, वह आपका शत्रु है, आपके मतलब को, आपके यज्ञ को पूरा होने में बाधा कर रहा है, इसलिए हम तो उसको यहीं पर बुलाएंगे, आप शांत रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निश्चिंत होकर के और यज्ञ को ठीक से चलने देना है, आपका काम हम कर देंगे। तो महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे और ऐसे महान थे कि उनके जो सहायक थे ऋत्वी थे, वही लोग उनका काम करने के लिए बिल्कुल तहे दिल से उतारू हैं, और अपने मंत्र बल से उनको बुला करके उनका हवन करेंगे। बस इंद्र को हम लोग अपने मंत्र बल से उसको बुला लेंगे और बुलाने के बाद उसको तत्काल अग्नि में हम हवन कर देंगे, उसको खत्म करना है। वो आपका हित कर रहा है, आपका बुरा देख रहा है, बुरा करना चाहता है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत यज्ञ में मौन व्रत लेकर और बैठे वैसे बैठे रहिए, हम उस सब कार्य को कर देंगे। इस प्रकार से ऋत्विजों ने पृथु महाराज से मंत्रणा किया, उनको समझाया कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आपका कार्य हम कर देंगे, आपके शत्रु को हम यहाँ पर बुला करके हवन कर देंगे। तो अयात यामोपहवई, जिसकी शक्ति अगत है, वीर्य है, जो जिसकी शक्ति कभी फेल होने वाली नहीं है, निश्चित काम करेगी और उसके द्वारा बुलाएंगे और यज्ञ में हवन कर देंगे। बहुत भारी उपद्रव का प्लान हो रहा है। तो अगले श्लोक में अभ्येत स्वयंभू प्रत्यषेधत, खुद ब्रह्मा जी को वहां पर आ करके और उन ऋतुजों से श्रुद्धस्तान, तो उन ऋतुजों से ब्रह्मा जी को आ करके उनके पास जा करके समझा के समझाना पड़ा कि आप लोग ब्राह्मण हो, सबके मुख हो, मुंह में खाया जाता है और सब जगह ठीक ठीक पहुंच जाता है, समता का व्यवहार होता है, आप लोग यज्ञ कर रहे हो, देवताओं की पूजा कर रहे हो, अन्य देवताओं की पूजा करोगे और जो यज्ञ पुरुष है इंद्र है उसका वध करोगे, यही काम है तुम लोगों के जी में, बस बस 99 जग हो गया ना, जो 99 हो गया वही बहुत ज्यादा अलम बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये यज्ञ को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। महाराज आप मोक्ष धर्मविद हैं, आप मोक्ष धर्म को, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग पुरुषार्थ और मोक्ष, तो आप तो मोक्ष को जानने वाले हैं जिसमें कि राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह सब नहीं रहता है, सबसे उपराम आदमी रहता है, तो उसको आप बीत हैं, उसको बहुत बढ़िया से जानने वाले हैं मोक्ष धर्म को, इस यज्ञ से आपको क्या जरूरत है, आप झूठे इसमें फंसे हुए हैं, छोड़िए इसको इंद्र, क्योंकि देवानाम दुर्वग्रह, देवानाम दुर्वग्रह, देवता लोग बड़े आदमी बड़े लोग हैं और बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े पोजीशन वाले हैं, उनके मन में दुर्वग्रह होती है, जो मन में उनके आ जाती है उसको जल्दी छोड़ते नहीं हैं, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, मानते हैं। तो कितना हूँ आप करेंगे, देवता हैं इंद्र और देवराज हैं, ये जो ठाने हैं उस वो ऐसा करेंगे ही, ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं उनको कुछ ऐसा निश्चय कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, आप उनको समझा देंगे कि हाँ ठीक से व्यवहार कीजिए, चाहे छोड़िए बेचारा कर दिया ऐसा कर रहा है तो क्या उसके साथ आपको ध्यान देने की जरूरत है, कर लेंगे, लेकिन जिस पर उनकी रुख खराब हुआ है उसको छोड़ते नहीं है छोड़ते नहीं है, तो दुर्वग्रह होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें सब में नहीं होता है लेकिन कभी बड़े लोगों में ज्यादा होता है, मन में सोच लिए कि ये ऐसे चल रहा है तो इसका तो खिदमत बनना चाहिए, तो बस करते हैं। तो देवराज इंद्र हैं, आप मानव लीला में हैं, आप मनुष्य हैं, आप ही मान जाइए, इंद्र माने चाहे न माने आप मान जाइए, छोड़ दीजिए यज्ञ, 100 यज्ञ पूरा करने के फेरा छोड़ दीजिए, बस जो हो गया है उतना ही पर संतोष कीजिए, और मान गए महाराज पृथु मान गए और यज्ञ छोड़ दिए। तो ये पृथ्वी महाराज का चरित्र है। पृथ्वी महाराज भगवान के महान भक्त थे, 10,000 कान से भगवान का जस सुनते थे, इतने महान। तो उनके लीला को यहाँ रखा गया है जिसे सुन करके पढ़ करके हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। हरे कृष्ण, जय प्रश्न उत्तर थोड़ा समय है। ठीक है, हरे कृष्ण।